بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، آج آپ قرآن مجید کے سورہ مائدہ کی آیت کرمانک 54, 55 اور 56 کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں محمد صدیق منشاوی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله والله واسع عليم۔ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔
صدق الله العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دھرم سے پھرے گا वो जान ले कि इससे ईश्वर को कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि भविष्य में ईश्वर ऐसे लोगों को लाएगा जिन्हें वो पसंद करता होगा, और वे भी ईश्वर को पसंद करते होंगे। वे ईमान वालों के समक्ष नर्म और काफिरों के समक्ष कड़े होंगे। वे ईश्वर के मार्ग में जिहाद और संघर्ष करेंगे तथा किसी धिक्कार करने वाले की धिक्कार से नहीं डरेंगे। ये ईश्वर की कृपा है जिसे वो जिसको चाहता है प्रदान करता है, और ईश्वर अत्यंत व्यापक ज्ञान वाला और जानकार है। हे ईमान वालों, तुम्हारा अभिभावक तथा स्वामी केवल ईश्वर, उसका पैगंबर और वे ईमान वाले हैं जो नमाज कायम करते हैं और रुकू की स्थिति में ज़कात देते हैं। और जो कोई ईश्वर, उसके पैगंबर तथा ऐसे ईमान वालों की अभिभावकता और स्वामित्व को स्वीकार करे, तो जान लो कि निसंदेह ईश्वर का गुठी प्रभुत्व प्राप्त करने वाला है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, सभा में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार है, नवंबर की 26, आजर माह की 5 और रबीउल सानी की 20 तारीख। कार्यक्रम में आप पहले विश्व समाचार सुनेंगे, फिर राजनीतिक चर्चा पेश की जाएगी, जिसके उपरांत विशेष कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे, और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा पत्र संसार। तो श्रोताओं, ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले आज के प्रमुख समाचारों का सारांश। वियना वार्ता के अवसर पर ईरान ने पश्चिम के अनुचित व्यवहार की आलोचना की है। हसन अबू तोराबी का कहना है कि अमेरिका के चक्कर में यूरोपीय देश कहीं अपने राष्ट्रीय हितों को खतरे में न डाल दे। इराक में दाइश के खतरनाक कार्यक्रम को विफल बना दिया गया। भारत में किसान आंदोलन को आज पूरा एक वर्ष हो गया। और अब आप विस्तार से कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए। ईरान ने वियना वार्ता के अवसर पर पश्चिम के अनुचित व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट करके वियना वार्ता के अवसर पर यूरोपीय ट्राइका और अमरीका की कार्रवाइयों तथा रवैये की आलोचना की। उन्होंने कहा है कि वियना वार्ता के अवसर पर पश्चिमी पक्ष प्रतिबंधों को बढ़ाने, धांधली वाले बयान जारी करने, दिग्भ्रमित करने वाली बातें पेश करके तथा इसराइल की धमकियों पर चुप रहने की कार्रवाई कर रहा है, जबकि ईरान ने गंभीर और उच्च स्तरीय वार्ताकार टीम का गठन किया है। तेहरान तुरंत एक अच्छा समझौता और परमाणु समझौते तथा प्रस्ताव क्रमांक 2231 को पूरी तरह से लागू करने तथा क्षेत्रीय वार्ता की मांग करता है। ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था के प्रवक्ता ने कहा है कि ईरान की सारी परमाणु गतिविधियां कानून के दायरे में हैं, लेकिन कुछ लोग ईरान के खिलाफ आरोप लगाने में व्यस्त हैं। बहरूस कमालबंदी ने गुरुवार की रात ईरान के स्थानीय टेलीविजन के एक विशेष कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक के हालिया ईरान दौरे की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम का राजनीतिकरण करने का प्रयास किया है, किंतु ईरान का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण लक्ष्यों के लिए है और ईरान ने अब तक अपने सारे वादों पर अमल किया है। तेहरान के इमाम जुमा ने यूरोपीय देशों से सिफारिश की है कि वे अवैध ज़ायोनी शासन और अमेरिका के चक्कर में पड़कर अपने राष्ट्रों के हितों को खतरे में न डालें। حجت الاسلام سید محمد حسن ابو ترابی فرد نے اسلامی گڑتنتر ایران اور گٹ چار دھن ایک کے بیچ ہونے والی وارتا کی اور سنکیت کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سمے راجنیتک وشلیشک اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نکٹ بھوش میں اویدھ زائونی شاسن فلسطینی شیتر میں ہوگا ہی نہیں۔ ابو ترابی فرد نے کہا کہ یوروپی دیش اپنے راشٹروں کے ہتوں کو اس شاسن سے نہ جوڑیں جس کا نکٹ نزدیک ہے، شما کیجیے گا جس کا سماپن نزدیک ہے۔ یہ کام یوروپی دیشوں کی اسٹریٹجک غلطی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ یوروپی راشٹروں کے ہت ایشیا وشیش کر پشچمی ایشیا کے دیشوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ سید محمد حسن ابو ترابی فرد کا کہنا تھا کہ پرتیرودھک گٹوں کا پرتیرودھ نہ ہوتا تو پورا یوروپ اشانتی کا شکار ہو جاتا۔ انہوں نے کہا کہ پرتیرودھک کیندر نے ہی اپنی پوری شمتا کے ساتھ داعش کا دمن کیا۔ عراق میں آتنکوادی گٹ داعش نے ایک بار پھر اس دیش کو دہلانے کی کوشش کی، جسے رہتے سمے سینا نے وفل بنا دیا۔ ینگ جرنلسٹ کلب کی رپورٹ کے انوسار تکفیری آتنکوادی گٹ داعش کی آتنکوادی کارروائی کو وفل بناتے ہوئے عراق کے سوئم سیوی بل حشد الشعبی نے پچھلے 48 گھنٹے کے دوران بغداد کے دکشنی کھیتروں میں داعش کے ہتھیاروں سے بھرے ہوئے 3 خفیہ گوداموں کو پکڑا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عراقی سوئم سیوی بلوں نے اس آپریشن کے دوران داعش کے گوداموں میں آدھونک ہتھیار، میزائل اور گولہ بارود برآمد کیے۔ عراقی سوئم سیوی بل نے بیان میں کہا ہے کہ راجدھانی بغداد کو بھاری تباہی سے بچا لیا گیا اور داعش ان ہتھیاروں سے راجدھانی بغداد سہیت دیش کے انیہ کھیتروں میں بڑی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یمن کو وبھاجت کرنے کی امریکہ کی سازش اب بے نقاب ہو گئی ہے۔ یمن کے معاملے میں امریکہ کے وشیش دوت کی اور سے یمن کے وبھاجن کی امریکی سازش کا پردہ فاش ہوا ہے۔ یمن کے معاملوں میں امریکہ کے وشیش دوت ٹم لینڈر کنگ نے گروار کو یمن کے وبھن دلوں کے نیتاؤں سے ملاقات کے دوران یمن کو دکشنی اور اتری حصوں میں وبھاجت کرنے کا فارمولہ پیش کیا۔ میڈیا کے سوتروں کا کہنا ہے کہ یمن کے اتری کھیتروں میں امریکہ کی اور سے سینیہ پربھاؤ میں وفلتا کے بعد اب واشنگٹن نے یمن کے وبھاجن کی یوجنا پیش کی ہے۔ امریکہ کی شڈینترکاری یوجنا ایسے سمے میں سامنے آئی ہے کہ اس سے پہلے سنیکت عرب امارات سے سمبندھت دکشنی کاؤنسل کے پرمکھ نے امریکی راشٹرپتی سے یمن کے وبھاجن کے فارمولے کا سمرتھن کرنے کی مانگ کی تھی۔ امریکہ اور سعودی عرب کے رشتوں میں ایک بار پھر سے تناؤ بڑھ گیا ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب کے بیچ یہ حالت تیل کی پیداوار کو لے کر بنی ہے۔ کورونا مہاماری کی وجہ سے کچے تیل کے اتپادن کو لے کر پرمکھ تیل اتپادک دیشوں نے جو رڑنیتی اپنائی ہے اس سے امریکہ کے حالات بگڑ گئے ہیں۔ امریکی پرشاسن کی لاکھوں اپیل کے باوجود سعودی کراؤن پرنس تیل کی آپورتی نہ بڑھانے کے فیصلے پر اڈک دکھائی دے رہے ہیں۔ آخرکار امریکہ نے منگلوار کو گھوشنا کی ہے کہ پیٹرول کے دام کم کرنے کے لیے وہ اپنے رڑنیتک بھنڈار سے 5 کروڑ بیرل کچا تیل نکالے گا تاکہ اس سے امریکی جنتا کو راحت مل سکے۔ امریکہ کے اس بڑے قدم سے بازار میں تیل کی آپورتی میں کافی مدد ہوگی۔ گیات رہے کہ پچھلے 1.5 سال سے تیل اتپادک دیشوں کے سنگٹھن اوپیک کے بیچ سہمتی ہوئی تھی کہ کورونا مہاماری کی وجہ سے تیل کی مانگ کم ہوئی ہے اور تیل کے دام بھی کافی کم ہوئے ہیں، جس کے بعد ان دیشوں نے تیل کا اتپادن گھٹانے کا فیصلہ کیا تھا۔ چین اور امریکہ کے بڑھتے تناؤ کے بیچ واشنگٹن نے کئی چینی فرموں کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ یہ کمپنیاں چینی سینا کے کوانٹم کمپیوٹنگ کوششوں کو تیار کرنے میں مدد کر رہی تھیں۔ 8 چین بیسڈ ٹیکنالوجی کمپنیوں کو بلیک لسٹڈ کیا گیا ہے۔ راشٹریہ سرکشا کارنوں سے امریکہ نے ان کمپنیوں کو بلیک لسٹڈ کیا ہے۔ اس سمبندھ میں امریکی کامرس سیکرٹری نے بتایا کہ اس سے روسی اور چینی ملٹری ایڈوانسمنٹ اور ایکٹیویٹیز کے وکاس کو روکنے میں مدد ملے گی، جس میں پاکستان کی اسرکشت پرمانو گتیویدھیاں یا بیلسٹک میزائل کارکرم بھی شامل ہے۔ भारत में तीन कृषि कानूनों के विरोध की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर एकत्रित हुए हैं। किसानों के एक समूह ने केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर के विरोध के दौरान जान गंवाने वालों को मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी। किसान आंदोलन का एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में किसानों ने भारत में कई कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। किसान पिछले एक साल से दिल्ली की तीन सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 26-27 नवंबर को दिल्ली चलो कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ था। अफगानिस्तान के अफगान हजारा कम्युनिटी के सरदारों ने तालिबान के समर्थन का ऐलान कर दिया है। हजारा कम्युनिटी के 1000 से अधिक सरदारों ने तालिबान की सरकार का समर्थन करते हुए कहा है कि पूर्व की पश्चिम समर्थित सरकारों का अंधकारमयी काल इस्लामवादियों की वापसी के साथ अब खत्म हो गया। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। राजनीतिक चर्चा। श्रोताओं, आपका स्वागत है कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में। मैं हूं अहमद अब्बास। राजनीतिक चर्चा में आज हम बात करेंगे ईरान में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में ईरान के प्रतिनिधि के दो टूक बयान की।
انتقاد شد از اینکه طرف‌های دیگر برجام مثل اتحادیه اروپا।
कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में हम पश्चिमी देशों में फैल रहे इस्लामोफोबिया के बारे में भी एक रिपोर्ट आपको सुनवाएंगे।
डेली कल्चरल एम्बियंस ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स मुस्लिम्स ऑन द फ्रंट।
भारत नियंत्रित जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने भारत सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की है।
गॉडसे के हिंदुस्तान के साथ हम नहीं रह सकते।
ये विषय भी कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में शामिल रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं ईरान के प्रतिनिधि के बयान से। आईएईए के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में ईरान के प्रतिनिधि ने साफ साफ शब्दों में ईरान का पक्ष रखा और यूरोपीय देशों को उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाई। वियना से सुश्री काजिमी की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं अख्तर अब्बास।
वियना में ईरान के प्रभारी राजदूत ने आईएईए के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में जोर देकर कहा कि जब तक ईरान पर लगे प्रतिबंध हटा नहीं लिए जाते तब तक ईरान से अधिक संयम रखने की आशा लगाना तर्कसंगत नहीं है।
انتقاد شد از اینکه طرف‌های دیگر برجام مثل اتحادیه اروپا و سه کشور عمده اروپایی।
प्रभारी राजदूत गायबी का कहना था कि बैठक में ईरान की ओर से इस बात की आलोचना की गई कि यूरोपीय संघ ने और विशेष रूप से तीन यूरोपीय देशों ने परमाणु समझौते के संदर्भ में प्रतिबद्धताओं पर अमल नहीं किया। अमेरिका इस समझौते से निकला तो चुप्पी साधे रखी और अमेरिका ने पाबंदियां कड़ी की तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। ईरान के राजदूत का कहना है कि अन्य देशों से ईरान की जो वार्ताएं हुई हैं उनसे ये पता चला है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जाएगा।
های دو جانبه ای که با سفرهای کشورهای مقیم در
وینا میں جن دیشوں کے دوتاواس ہیں ان سے ہماری بات چیت ہوئی ہے۔ اسی طرح IAEA کے پرمکھ سے تہران میں جو وارتا ہوئی اس میں صاف صاف ہم نے کہہ دیا ہے کہ اگر کسی بھی دیش نے خاص طور پر پشچمی دیشوں نے جلد بازی میں بنا سوچے سمجھے کوئی قدم اٹھایا تو نشچت روپ سے اس کا نکاراتمک اثر اگلے ہفتے کی وارتا پر پڑے گا۔ ایران نے بورڈ آف گورنرز کی بیٹھک میں صاف شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ اگلے ہفتے وینا میں ہونے جا رہی وارتا ندیشوں کے لیے ایک موقع ہے جس میں وہ اپنی پرتیبدھتاؤں پر عمل کرنے کے بارے میں اپنی سچی نیت کا پریچے دے سکتے ہیں۔ ایران کے پرتنیدھی نے بورڈ آف گورنرز کی بیٹھک میں کہا کہ تکنیکی سہیوگ اور آئی اے ای اے سے ایران کا سہیوگ اسی طرح جاری رہے گا۔ وینا سے آئی آر آئی بی کے لیے کاظمی کی رپورٹ۔ پشمی دیشوں میں اسلامو فوبیا تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ لندن سے مجتبیٰ قاسم زادے کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں قائم رضوی۔
اسلامی مانوادھیکار آیوگ کی سمیکشا کی تازہ ترین رپورٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پشمی دیشوں میں اسلامو فوبیا میں بڑی تیزی سے وردھی ہو رہی ہے۔
Anti-Muslim sentiment.
اسلامی مانوادھیکار آیوگ کی سمیکشا کے نتیجوں سے پتہ چلتا ہے کہ 2010 میں 50% لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ انہوں نے کسی مسلمان پر اسلامو فوبیا کے تحت ہونے والے حملوں کی گھٹنا دیکھی، مگر 5 سال بعد برٹن میں 80% لوگوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں اور اسلامی استھلوں پر حملوں کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔
تنفر پروری بر علیہ مسلمانوں یہ چیزی ہے کہ سسٹماتک ہے۔
اسلامی مانوادھیکار آیوگ کے ورشٹھ سدسیہ کا کہنا ہے کہ مسلمانوں پر یوجنا بدھ طریقے سے حملے ہو رہے ہیں اور ان حملوں کو کچھ سنگٹھنوں، میڈیا اور سموہوں کی اور سے پرایوجت کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں پر شکنجا کسا جا سکے۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمان اگر عقیدے کا بہت پکا نہ بھی ہو تب بھی اتیاچار کے خلاف وہ آواز اٹھاتا ہے۔ وہ سماج کو ایسا بنانا چاہتے ہیں جس سے سب کو فائدہ پہنچے۔ سامراجواد اور وستارواد پر انکش لگانا اسلامی پروتی میں شامل ہے، یہ بات وہ اب سمجھ چکے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کو غیر بتایا جائے، یہ کہا جائے کہ ان کا ہمارے سماج سے کوئی سمبندھ نہیں ہے اور پھر وہ سب مسلمانوں کے خلاف ایک جٹ ہو جائیں۔ سن 2010 کے سروے میں 60% لوگوں نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ماحول بنانے اور نفرت پھیلانے میں برٹن کے راج نیتاؤں اور ادھیکاریوں کا ہاتھ ہے، مگر اب 85% برٹن واسیوں کی بھی سوچ اب یہی ہو گئی ہے۔
Daily cultural ambience of hatred towards Muslims on the front.
برطانی مسلمان یوا کہتا ہے کہ اخباروں کے فرنٹ پیج پر مسلمانوں سے نفرت پھیلانے والی سامگری بھری رہتی ہے۔ میڈیا جب مسلمانوں کے بارے میں اس طرح کی رپورٹیں پیش کرتا ہے تو میڈیا کے نیموں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ مسلمانوں کو ساری دنیا میں پھیلی تباہی کا ذمہ دار بتاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک تراسدی ہے جس کا نشانہ صرف مسلمان بنائے جا رہے ہیں۔ اسلامی مانوادھیکار آیوگ کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ سن 2010 میں 30% مسلمانوں نے یہ بات سویکار کی تھی کہ انہوں نے اس دیش کے اخباروں میں اسلامو فوبیا کی سامگری نہیں دیکھی، لیکن اب برٹن کے 94% مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اس دیش کے میڈیا میں مسلمانوں سے نفرت پھیلانے والی سامگری کی باڑھ سی آ گئی ہے۔ برٹن کی دوسری سنستھاؤں کے ذریعے کیے گئے ادھیئن کی بات کی جائے تو نیو کیسل یونیورسٹی کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ برٹن میں 68% مسلمان پرتی دن اسلامو فوبیا کی مار جھیل رہے ہیں اور اسے سہن کر رہے ہیں۔ لندن سے آئی آر آئی بی کے لیے مشتبہ قاسم زادے کی رپورٹ۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش۔ کاریکرم راجنیتک چرچا۔
بھارت نیتری جموں کشمیر کی پورو مکھیمنتری محبوبہ مفتی نے کیندر کی مودی سرکار کی نیتیوں کی آلوچنا کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر بھارت چاہتا ہے کہ کشمیر اس کے ساتھ رہے تو کشمیر کے ادھیکاروں کو بحال کرنا ہوگا۔ بیورے کے ساتھ ہمارے سنواد داتا سپتے محمد حسن.
جموں کشمیر کی بھوتپورو مکھیمنتری اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ادھیکش محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ نئی دہلی کو آج یا کل کسی بھی حال میں جموں کشمیر کے جو وشیش اختیار انہوں نے چھینے ہیں واپس کرنے ہوں گے. جموں میں ایک بہت بڑی جن سبھا کو سمبوجھت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 5 اگست 2019 کو جو گھٹنا گھٹی ہے اس نے جموں کشمیر میں جو ناراضگی پیدا کی ہے اس کی بھرپائی تب تک ممکن نہیں ہے جب تک وشیش اختیارات جموں کشمیر کی جنتا کو واپس نہیں لوٹائے جاتے ہیں.
گوڈ سے کہ ہندوستان کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے, ہمیں گاندھی کا ہندوستان چاہیے, ہمیں نہرو کا ہندوستان چاہیے, ہمیں اپنی شناخت واپس چاہیے, ہمیں ہندوستان کے آئین نے جو ہم کو دیا تھا وہ واپس چاہیے اور سود کے سمیت واپس چاہیے. اس لیے اگر ساری اکوٹ کرو, اگر کچھ آواز کشمیر سے لے کے بانہال سے لے کے راجوری پونچھ ڈوڈا کشتواڑ اگر اس کچھ کات کرو اگے آواز کرو.
محبوبہ مفتی نے بھاجپا پرشاسن پر تابڑتوڑ آکرمن کرتے ہوئے کہا کہ اس پرشاسن نے جموں کشمیر میں استھتی کو انتہائی تناؤ پورن بنا دیا. انہوں نے کہا کہ اب یہاں پر ہر مارگ پر صرف اور صرف سرکشا بل ہی نظر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ وارتا ہونی چاہیے تھی پرنتو ایسا بھی سمبھو نہیں ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ نئی دہلی کی موجودہ پالیسی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہ لوگ ایک طرف طالبان سے تو وارتا کرتے ہیں پرنتو پاکستان سے وارتا کرنا نہیں چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مارداڑ سے کشمیری لوگ ان کے ساتھ نہیں رہیں گے اور جو نیتیاں انہوں نے اپنائی ہے اگر اس میں بدلاؤ نہیں لایا گیا تو یہاں کے لوگ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ انہیں بھوش میں کیا کرنا ہوگا.
جموں کشمیر کو رکھنا ہے اپنے ساتھ تو 370-35 ہے اور مسئلے کشمیر حل کرنے کے ساتھ ساتھ رکھنا ہوگا. ڈنڈے کے بلبوتے پہ, بندوق کے بلبوتے پہ, لاشوں کو دبانے کے بلبوتے پہ آپ کشمیر کو ساتھ نہیں رکھ سکتے, آپ کشمیر کو رات ساتھ نہیں رکھ سکتے. یہاں تو دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں آئی ہیں, بڑے بڑے لوگوں نے بندوقیں لائی ہیں, مگر بندوق کے بلبوتے پہ امریکہ کو بھی افغانستان پہ راج نہیں کر سکا, اس کو نکلنا پڑا. اور آج ہمارے لوگ جن کو غصہ آتا ہے جب میں کہتی ہوں پاکستان سے بات کرو, آج وہ طالبان سے بات کر رہے ہیں, کر رہے ہیں نا.
انہوں نے کہا کہ کشمیر کے حوالے سے ان کے پارٹی نے جو نیتیاں اپنائی ہے وہ آج بھی اس پر برابر قائم ہے اور ہم نئی دہلی کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے مطالبے ہیں اس سے ایک انچ بھی واپس نہیں ہٹیں گے. اس بیچ دو دیوس قبل سری نگر کے رام باغ میں پیش آئی گھٹنا جس میں بتایا گیا تھا کہ 3 الگ آبادی چھاپہ مار ہتاحت ہوئے تھے, الگ آبادی دلوں کے احوان پر ایک عام بند کے کارن سامان جن جیون است ویست ہو کر رہ گیا. سری نگر اور گاٹھی کے تمام قصبہ جات میں اس عام بند کا اچھا خاصا پربھاؤ دیکھنے کو ملا. سری نگر اور گاٹھی کے انیہ چھیتروں میں تمام کاروباری ادارے بند رہے جبکہ سرکاری کام کاج پر بھی اس کا اثر دیکھنے کو ملا. سپتی محمد حسن, ریڈیو تہران, سری نگر.
اور اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا کارکرم سماپت ہوتا ہے. یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. شوتاؤ, اب پرستت ہے سوئم سیوی دیوس پر ہمارا وشیش کارکرم, جس کے بعد آپ سنیں گے سبھا کا انتم کارکرم پتر سنسار.
श्रोतागण, आज बसीज दिवस है. इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम के साथ स्वाति और मोहम्मद मेहदी आपकी सेवा में हाजिर हैं. हमारा सलाम स्वीकार करें.
श्रोता, 11 फरवरी वर्ष 1979 को ईरान की इस्लामी क्रांति सफल हुई थी. उसके कई महीने बाद 5 आज़र سن 1358 ہجری شمسی برابر 26 نومبر 1979 کو سورگیہ امام خونی رحمت اللہ علیہ نے بسیج ارتھات سوئم سیوی بل کے گٹھن کا آدیش دیا تھا. उस समय उपद्रवीय असामाजिक तत्व विदेशी शक्तियों के समर्थन से ईरान के भीतर विध्वंसक कार्रवाइयां अंजाम देते थे। यहां तक कि देश के विभाजन के लिए ईरान के कुछ इलाकों में सशस्त्र आतंकवादी कार्रवाइयां भी करते थे।
स्वर्गीय इमाम खुमैनी लोगों की शक्ति पर भरोसा करते थे। उन्होंने इस्लामिक क्रांति के खतरों से मुकाबले के लिए लोगों का मैदान में आ जाने का आह्वान किया। ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद अली खामेनेई बसीज के गठन की वर्षगांठ पर कहते हैं, बसीज का गठन उस संघर्ष की याद दिलाता है जिसने इराक द्वारा ईरान पर थोपे गए 8 वर्षीय युद्ध के दौरान बहादुरी, त्याग और विनम्रता का उदाहरण पेश किया है। इसी तरह बसीज उन स्वाभिमानी और पाक जवानों की याद दिलाता है जो रातों को महान ईश्वर की उपासना करते थे और समय के शैतान से जेहाद व संघर्ष करते थे और उन्होंने रणक्षेत्र को उपासना स्थल में बदल दिया था। उन युवाओं ने महान ईश्वर की प्रसन्नता के लिए जवानी के आनंदों को छोड़ दिया। बूढ़ों ने रणक्षेत्र की कठिनाइयों को बुढ़ापे के आराम पर प्राथमिकता दी। बसीज उन लोगों को याद दिलाता है जिन्होंने पत्नी, संतान, दोस्त और घर बार सब कुछ महान ईश्वर के प्रेम में और उसकी प्रसन्नता के लिए कुर्बान कर दिया। बसीज उन महान इंसानों की याद दिलाता है जिन्होंने बड़ी शक्तियों की झूठी धौस की परवाह किए बिना अपनी संस्कृति और इस्लामी मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष किया।
स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने बसीज का गठन करके अपनी दूरदर्शिता व दूरगामी सोच का परिचय दिया। बसीज का गठन हुए 10 महीने से अधिक का समय नहीं गुजरा था कि इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम ने ईरान पर सैनिक हमला कर दिया। सद्दाम ने इराक के विस्तार के लिए क्षेत्र के अपने दोस्तों और पश्चिम की वर्चस्ववादी सरकारों के उकसावे व प्रोत्साहन पर ईरान पर हमला कर दिया और ईरान की कुछ भूमियों पर कब्जा भी कर लिया। ईरान पर सद्दाम ने जो हमला किया था उसका एक लक्ष्य ईरान के इस्लामी क्रांति को खत्म कर देना था। सद्दाम और उसके समर्थकों ने सोचा था कि ईरान की राजनीतिक व सामाजिक स्थिति का लाभ उठाकर वे ईरान के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लेंगे और साथ ही इस्लामी क्रांति को भी खत्म कर देंगे। परंतु ईरान की बहादुर सेना, विशेषकर स्वयं सेवी सेना बसीज ने जिस अदम्य साहस और शूरवीरता का परिचय दिया उससे सद्दाम और उसके क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समर्थक अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल न कर सके।
ईरानी राष्ट्र के नेतृत्व और उसके मार्गदर्शन में जो भूमिका स्वर्गीय इमाम खुमैनी ने निभाई थी उनके बाद वही भूमिका आज इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद अली खामेनेई निभा रहे हैं। बसीज उनके दिशा निर्देशन में देश के विकास और प्रगति के लिए पूरी तन्मयता से काम कर रही है। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता बसीज की भूमिका की सराहना करते हुए कहते हैं कि जब तक बसीज है इस्लामी व्यवस्था और इस्लामी गणतंत्र को दुश्मनों की ओर से कोई खतरा नहीं है और वह एक बुनियादी आधार व स्तंभ है। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता के शब्दों में बसीज का पौधा स्वर्गीय इमाम खुमैनी ने लगाया था और इस समय वह एक बड़ा और मजबूत वृक्ष हो गया है। उसके फलों से ईरानी जनता व लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
बसीज की एक विशेषता यह है कि वो पूरी निष्ठा के साथ महान व सर्वसमर्थ ईश्वर की प्रसन्नता के लिए काम करती है। आज समूचे ईरान में लाखों लोग स्वयं सेवी सेना बसीज के सदस्य हैं और देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इस संबंध में ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद अली खामेनेई कहते हैं कि बसीज वो समूह है जिसमें पवित्र लोग त्याग व बलिदान और ईरानी राष्ट्र के उच्च उद्देश्यों के प्राप्त करने के लिए जमा हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बसीज की भूमिका का इनकार नहीं किया जा सकता और मोमिन युवा स्वयं सेवी सेना बसीज के मूल स्तंभ व आधार हैं। इस संबंध में वो कहते हैं, बड़ी खुशी व सौभाग्य की बात है कि लोगों के विभिन्न वर्गों ने बसीज की आवाज पर लबैक कहा है। ईरान के हर क्षेत्र और हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं।
स्वयंसेवी सेना बसीज की एक विशेषता व पहचान अंतर्दृष्टि है। अगर अंतर्दृष्टि न हो तो निष्ठा, त्याग और दूसरे सारे प्रयास व्यर्थ हो सकते हैं। इस संबंध में इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता बसीज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि प्रिय जवानों और प्रिय बसीजियों, आज आप देश के जिन क्षेत्र में भी हो, दिन प्रतिदिन अपनी अंतर्दृष्टि को अधिक से अधिक कीजिए। इस बात की अनुमति न दीजिए कि भौतिक चीजें और छोटी समस्याएं अंतर्दृष्टि के मार्ग में बाधा बन जाए। अपने दुश्मनों को पहचानिए, उसकी विभिन्न चालें हैं और वही राष्ट्र सफल होगा जो उसकी चाल में नहीं आएगा।
स्वयंसेवी सेना बसीज की एक विशेषता यह है कि वो पूरी निष्ठा व तन्मयता के साथ काम करती है। बसीज सेना के जवान अपने कार्यों को महान ईश्वर के लिए अंजाम देते हैं और किसी से भी वो अपने कार्यों के प्रतिदान की अपेक्षा नहीं रखते हैं। इस बारे में इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि देश के जिस क्षेत्र को भी बेहतरीन और मोमिन युवाओं की जरूरत होती है, मोमिन युवा आते और किसी प्रकार के प्रतिदान की अपेक्षा के बिना पूरी तन्मयता से काम करते हैं। इसी प्रकार सर्वोच्च नेता कहते हैं कि बसीज पैसा, पद और प्रसिद्धि आदि पर निर्भर व संबंधित नहीं है, वो इन सबसे बहुत ऊपर है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सेना और सिपाही पासदारन हैं और बसीज नाम की एक अलग सशस्त्र सेना है। बसीज वो सेना है जो धार्मिक शिक्षाओं व मूल्यों की छत्रछाया में हथियारों से लैस है और देश को जरूरत पड़ने की स्थिति में सशस्त्र सेना के साथ वो सबसे अधिक अपने दायित्वों का निर्वाह करेगी, जैसा कि युद्ध में देखा गया।
बहुत से सैनिक विशेषज्ञों ने स्वीकार किया और कहा कि स्वयंसेवी सेना बसीज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मजबूत और सुव्यवस्थित सेना है। ईरान के इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता कहते हैं कि स्वयंसेवी सेना बसीज के जवानों को चाहिए कि वे समय की आधुनिकतम तकनीक से भी लैस हो, क्योंकि सर्वोच्च नेता के अनुसार ईमान और ज्ञान विकास के दो पंख हैं।
यहाँ इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि स्वयंसेवी सेना बसीज के जवान किसी क्षेत्र या वर्ग से विशेष नहीं है। बसीज में समाज के हर वर्ग के जवान शामिल हैं। ईरानी समाज को जब भी जरूरत पड़ती है, उस काम से संबंधित बसीज के जवान काम को पूरी निष्ठा के साथ अंजाम देते हैं। अगर ईरान के किसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है और वहां के लोगों को आवास, खाने पीने और दवा आदि की जरूरत पड़ती है, तो इन समस्त जरूरतों को पूरा करने के लिए बसीज के जवान मैदान में आ जाते हैं। वे घर निर्माण, सड़क निर्माण, पुल और हॉस्पिटल निर्माण आदि में भाग लेते हैं। वे बाढ़ और भूकंप जैसी आपदा और युद्ध जैसी स्थिति से निपटने में लोगों को उल्लेखनीय सेवाएं देते हैं।
यही नहीं, इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम ने जब ईरान पर हमला किया था तो देश की रक्षा में बसीज ने अविस्मरणीय भूमिका निभाई थी। बसीज के जवानों ने बहुत से उन कार्यों को अंजाम दिया था जिसकी दुश्मनों ने कल्पना भी नहीं की थी। जब सद्दाम ने ईरान पर जल, थल और वायु से हमला किया था तो बहुत से लोग यही समझ रहे थे कि कुछ ही दिनों में सद्दाम पूरे ईरान पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि उस समय इराकी सेना समय के आधुनिकतम हथियारों से लैस थी और उसे दुनिया की बड़ी ताकतों का व्यापक समर्थन भी प्राप्त था। जो लोग सद्दाम का समर्थन कर रहे थे और उसे ईरान पर हमले के लिए उकसाया था, उन सब का लक्ष्य इस्लामी क्रांति को खत्म करना और ईरान की इस्लामी व्यवस्था का अंत कर देना था, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने सद्दाम के समर्थन में किसी प्रकार के संकोच से काम नहीं लिया था। जो देश सद्दाम का समर्थन कर रहे थे उनमें सर्वोपरि अमेरिका था। जिस वक्त ईरान में शाह की तानाशाही सरकार थी, उस वक्त ईरान क्षेत्र में अमेरिकी हितों का एक महत्वपूर्ण अड्डा था और इस्लामिक क्रांति के सफल हो जाने से उसका ये अड्डा समाप्त हो गया।
ईरान इराक युद्ध के दौरान अमेरिका ने सद्दाम की जो मदद की और उसे आधुनिकतम हथियारों से लैस किया, तो वास्तव में उसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य ईरान में इस्लामी क्रांति को समाप्त करना और इस्लामी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना था, क्योंकि इन्हीं की वजह से ईरान में अमेरिकी हित समाप्त हो गए और वो अपने हितों को प्राप्त करने के लिए सद्दाम का व्यापक समर्थन करता था।
यही नहीं, दर्जनों बार सद्दाम ने ईरान के विभिन्न क्षेत्रों पर रासायनिक बमबारी करवाई, जिसमें हजारों ईरानी शहीद घायल हुए और आज भी हर कुछ समय पर रासायनिक बमबारी से पीड़ित व्यक्तियों की शहादत की खबर सुनने को मिलती रहती है। परंतु अमेरिका उसकी हां में हां मिलाने वाले और मानवाधिकार की रक्षा का दम भरने वाले देशों ने कभी भी सद्दाम के इन जघन्य अपराधों की भर्त्सना नहीं की। रोचक बात यह है कि जो देश मानवाधिकार की रक्षा का दम भरते हैं, उन्होंने ही इराक को रासायनिक हथियारों से लैस किया था, और एक दिन वह भी आया जब उन्हीं देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर सद्दाम की तानाशाही सरकार का अंत कर दिया।
दोस्तों, यहाँ एक अन्य रोचक बिंदु का उल्लेख जरूरी है, और वो ये है कि जिन देशों व कंपनियों ने सद्दाम को रासायनिक हथियारों से लैस किया था, उनके खिलाफ अमेरिका ने कभी भी प्रतिबंध नहीं लगाए और न ही उनका नाम ही लिया। परंतु दूसरे देशों की कंपनियों पर ईरान के साथ सहयोग करने का आरोप लगाकर उन पर प्रतिबंध लगा देता है। दूसरे शब्दों में, गैर कानूनी काम करने वाले देशों और कंपनियों के कृत्यों पर अर्थपूर्ण मौन धारण किए रहता है, पर जब कोई देश कानूनी रूप से ईरान से व्यापारिक लेन देन करता है तो उसकी कंपनी पर ईरान के साथ सहयोग करने के आरोप में प्रतिबंध लगा देता है। और इस समय दुनिया के अधिकांश देशों में जो भी समस्याएं व संकट हैं, उनमें उसकी परोक्ष व अपरोक्ष भूमिका है। इराक, सीरिया, अफगानिस्तान और यमन जैसे देशों में उसकी भूमिका को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है।
तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दें। खुदा हाफिज।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम।
पत्र संसार। दोस्तों, कार्यक्रम पत्र संसार में आपका स्वागत है। अपनी दीदी मरियम मेहर दादी और भैया अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
श्रोताओ, हम आशा करते हैं कि आप सकुशल होंगे और कार्यक्रम पत्र संसार सुनने के लिए तैयार होंगे।
और सदा की भांति आपके कुछ पत्र, ईमेल और कमेंट्स कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। तो भैया, सबसे पहले ईमेल से शुरू कर रहे हैं
जी।
ये जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे और परिवार के सभी सदस्य इन्होंने भेजा है
जी।
पहले तो इन्होंने विचार लिखा है, लिखते हैं, जो सब्र के साथ इंतज़ार करना जानते हैं उनके पास हर चीज़ किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती है। आगे लिखते हैं कि आप सभी, मरियम जी सलाम, आप सभी कैसे हो? हम भी यहाँ एकदम ठीक हैं और रेडियो तेहरान हिंदी सेवा के कार्यक्रम इन दिनों हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप हर शुक्रवार के दिन ईरानी संस्कृति से जुड़ी जानकारियों से हमें अवगत कराते हैं, उनको सुनकर हमारा बहुत ही ज्ञान बढ़ता है।
नागनपुरे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम के बारे में आपकी टिप्पणी के लिए। और आपने जो शुरू में सुविचार लिखा वो भी महत्वपूर्ण है। ये बात सही है कि अगर इंसान उतावला ना हो, जल्दबाजी ना करे और संयम से अपना काम करता रहे। अलबत्ता इंतज़ार के साथ साथ ये भी है कि प्रयास जारी रहना चाहिए, इंतज़ार के साथ काम रुकना नहीं चाहिए, तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है, ये बात महत्वपूर्ण है।
जी, आनंद मोहन बैन ने रेडियो तेहरान के कार्यक्रम के बारे में लिखा है कि रेडियो तेहरान के कार्यक्रम आर्काइव से सुन नहीं पा रहा हूँ, इस पर तुरंत कुछ करिए, रेडियो पर रिसेप्शन काफ़ी ख़राब है, मैं लिख लिख कर थक गया, लेकिन आप लोग श्रोताओं के साथ चलना नहीं चाहते हैं, पत्र संसार कार्यक्रम वेबसाइट पर क्यों नहीं देते हैं, समझ में नहीं आता, हम बार बार प्रार्थना करते रहेंगे, फिर भी धन्यवाद के साथ।
आनंद मोहन बैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमें उम्मीद है कि
जी भैया रिसेप्शन के बारे में इन्होंने जो भी लिखा था हमने पहुंचा दिया है, अभी उनको थोड़ा समय लग रहा है रिसेप्शन ठीक करने में, तो मैं आपको भी बता दूं और उनसे भी कह दूं
हो जाएगा, और आर्काइव की समस्या भी जरूर
जी अब तो हल ही हो गई है, पत्र संसार आप हमारे कार्यक्रम जो लिखा है वेबसाइट पे उसको अगर क्लिक करेंगे तो पत्र संसार भी उनको सुनने को मिलेगा,
वेबसाइट पर इसकी जगह बना दी गई है
जी,
जहाँ कार्यक्रम पत्र
ये इन्हीं की पिछना थी, क्या कहते हैं, इनके ही विचार
इनका सुझाव था, सलाह थी। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद इस सुझाव के लिए, और दीदी देखिए ये संयम की एक मिसाल है
जी, बिल्कुल
संयम के साथ वो लगे रहे, अपना प्रस्ताव देते रहे, अलबत्ता ये बात जरूरी तो ये है कि पहले ही सलाह पर अमल किया जाए, अगर वो सकारात्मक है, सकारात्मक तो सारी सलाह होती है, लेकिन अगर संभावना है उस पर अमल करने की तो इतना लंबा ना खींचे मेरे ख्याल से
जी,
तो
इंशाल्लाह के रिसेप्शन भी ठीक हो जाएगा और इनको कार्यक्रम सुनने को मिल जाएंगे।
तो श्रोताओ अब बारी है संस्कृति से जुड़ी खबर की, देखते हैं कि दीदी ने इस सप्ताह किस खबर का चयन किया है।
जी आज हम ईरान के पर्यटन के बारे में बात कर रहे हैं। ईरान के पर्यटन मंत्रालय के उप प्रमुख ने कहा है कि ईरान सीरिया के ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत के लिए तैयार है जो आतंकवादी दाएश जैसे समूहों के खिलाफ युद्ध में क्षतिग्रस्त हो गए थे। अली असगर शालबाफियान ने कहा है कि ईरान ऐसा करने में सक्षम है और सीरिया के साथ अपना अनुभव साझा कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान पर्यटन क्षेत्र की एक प्रमुख ताकत स्वास्थ्य और चिकित्सा पर्यटन है और हम सीरियाई पर्यटकों को सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। देश के खिलाफ विदेशी समर्थित आतंकवादी समूहों द्वारा छेड़े गए युद्ध के दौरान सीरिया के ऐतिहासिक स्मारकों को व्यापक नुकसान हुआ है। कुछ स्मारकों को आतंकवादियों द्वारा जानबूझकर क्षतिग्रस्त या नष्ट कर दिया गया था, विशेष रूप से दाएश आतंकवादियों ने।
जी ये बहुत अच्छी खबर आपने सुनाई कि इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। दाएश ने वाकई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, जहां बहुत सारी जिंदगियां ख़त्म कर दी, अशांति बड़े पैमाने पर फैला दी, वहीं पर सांस्कृतिक धरोहरों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया इस भयानक संगठन ने। तो श्रोताओ अब बारी है आपके कमेंट्स की, जो आप खबरों पर या अलग अलग जो पोस्ट होती है वेबसाइट पर उस पर जो आप देते हैं हमारी सोशल मीडिया में या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर।
जी अमरीकी राष्ट्रपति ने कमला हैरिस से अधिकार वापस ले लिया, इस पर सारा ली लिखती हैं, शराब का अधिक सेवन इस समस्या का कारण बनता है, कोई आश्चर्य नहीं कि हम देखते हैं कि सभी पश्चिमी नेता अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक सम्मेलनों में बैठते समय अपना मुंह फेरते रहते हैं।
जी ये एक खबर जो कि मीडिया में
जी मैं समझ गई
रही
जी,
उस पर कमेंट है और ये खबर बनी के कुछ देर के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने
जब उनको
तबीयत खराब हो गई थी,
जब उनको मेडिकल चेकअप के लिए जाना था, तो इस बीच में उन्होंने राष्ट्रपति के अधिकार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को सौंपे थे। रूटीन चेकअप था जिसमें ये देखा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस ओहदे के लिए पूरी तरह फिट हैं या नहीं।
हाँ जी, राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप का आरोप लगाकर अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए। इस पर अहमद सरन लिखते हैं, दुश्मन से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? अमेरिका एक दुश्मन है और राष्ट्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए उसे उसकी बुरी आदत है, और वे बिच्छू की तरह उन्हें भी डंक मारने की भी उन्हें आदत है। हमारे देश के संबंध में उनके पास सिर्फ प्रतिबंध का ही एक हथियार है। वार्ता की मेज पर आते ही अमेरिका और उनके सहयोगी सभी मिलकर ईरान की स्थिति की कमजोरी को लेकर समस्याओं को हल करने के बजाय विभिन्न समस्याओं को बढ़ाने का प्रयास करते हैं।
अमेरिका ईरान पर प्रतिबंध बहुत पहले से लगा रहा है, कई दशकों से प्रतिबंध लगा रहा है, और इनमें से कोई भी प्रतिबंध ऐसा नहीं है जिसका कोई तार्किक आधार या तार्किक कारण हो। बेवजह, बेबुनियाद और अकारण हरकत करते हुए अमेरिका ये प्रतिबंध लगा रहा है। अमेरिका को ये भी समझ में आ गया है कि इन प्रतिबंधों का कोई नतीजा हासिल होने वाला नहीं है। अमेरिका और उसके घटकों के बीच इस मुद्दे पर मतभेद भी पैदा हो गए हैं, लेकिन अमेरिका अपनी इस हरकत से बाज नहीं आ रहा है। उसको अभी भी लगता है कि ये उम्मीद है कि उसकी ये चाल किसी तरह से कारगर होगी, लेकिन ये विवेक और समझदारी के खिलाफ है कि इंसान बार बार आजमाई हुई चीज को आजमाता रहे।
जी, रूस और बेलारूस दोनों ने शरणार्थियों के बारे में पोलैंड की नीतियों की आलोचना की। इस पर उमरान लिखते हैं, 20 साल तक अमेरिका के पीछे छिपकर यूरोपीय लोगों ने, विशेष रूप से हत्यारे नाटो के लिए काम करने वाले कम उम्र के सैनिकों ने अफगानी, सीरियाई और इराकियों का नरसंहार किया है। अब वही बदमाश अपने अत्याचारों से इनकार कर रहे हैं, ताकि कई परिवारों के जीवन और आजीविका को नष्ट करने के लिए उन्हें जो कीमत चुकानी पड़े उससे बच जाए।
देखिए, ये तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है इस समय के सीमा पर, पोलैंड की सीमा पर जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं और जिस तरह से शरणार्थी वहाँ पर मौत की आशंका और ख़तरा झेल रहे हैं, ये मुद्दा काफ़ी गर्म हो गया है। इस पर जो कमेंट है उसमें इशारा किया गया है, जो वो अपनी जगह पर एक बड़ी सच्चाई है कि किस तरह से तबाही मचाई है इन देशों ने अलग अलग देशों में जाकर, जो कि निंदनीय है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि पश्चिमी देश मानवाधिकार की जो बात करते हैं उस पर बहुत हद तक वो खुद अमल नहीं करते, बल्कि बार बार ये देखा जाता है कि वो नज़रअंदाज करते हैं, जबकि अन्य देशों को जब उपदेश देने की बारी आती है तो आगे आगे रहते हैं।
जी, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने किस चीज की घोषणा की है? इस पर इमरान अली लिखते हैं, रिक्शा, भारत को रिक्शा के स्थान पर कुछ कम शोर और जहरीली चीजों को इस्तेमाल करने की जरूरत है।
जी, ये भी एक दिलचस्प टिप्पणी है, और देखते हैं कि भारत इस तरह की समस्याओं से कैसे निपटता है। और अब कार्यक्रम का बड़ा रोचक भाग, जिसमें हम अपने किसी श्रोता के विचार सुनते और अन्य श्रोताओं को सुनाते हैं।
जी, ये गुजरात से हमारे अच्छे श्रोता हैं मुस्तकीम मुतवा। ये पहले हमें कभी इन्होंने ईमेल या वेबसाइट पे ये कभी कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अब जब मोबाइल से जो संपर्क हम लोगों का हो रहा है वेबसाइट पे या व्हाट्सएप पे,
जी,
तो उसमें इन्होंने अपना
विचार भेजा है।
तो चलिए सुनते हैं।
नमस्कार, आदाब, गुड आफ्टरनून। मैं मुस्तकीम, मैं गुजरात से भूज से, हम रेडियो तेहरान हिंदी सर्विस बाकायदगी से डेली सुनते हैं हिंदी सर्विस के प्रोग्राम, और जो इसका प्रसारण है बिल्कुल हमारे यहाँ गुजरात में एकदम क्लियर पहुँचता है। हम मीडियम वे पर जो हिंदी सर्विस की सभाएं होती है उसे बिल्कुल हम सुनते हैं गौर शौक के साथ, शॉर्ट वे पर सुनते हैं, मीडियम वे पर सुनते हैं, तो जो रेडियो तेहरान हिंदी सर्विस है इसमें इसके जो लिसनर है, जो इसके चाहने वाले हैं, वो करोड़ों की संख्या में तादाद में इंडिया में, तो उसका जो प्रसारण क्वालिटी है वो भी बेहतरीन है, शानदार है। तो तमाम प्रोग्राम, लाजवाब खबरें, तबसरे जो भी होते हैं रेडियो तेहरान हिंदी सर्विस को, वो बहुत ही लाजवाब शानदार रहते हैं। सो हम आपके शुक्रगुजार हैं रेडियो तेहरान हिंदी सर्विस के कि आप इतने अच्छे प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करते हैं रेडियो पर। सो थैंक्स अ लॉट।
तो दीदी, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, मेरे ख्याल से बस इतना ही समय बचा है कि इतनी देर में आप ईमेल और व्हाट्सएप नंबर ये सब बता सकें।
जी, तो हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir और व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क नंबर है 0098-90-350-6542 और वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi।
तो श्रोताओ, इसी के साथ अगली मुलाकात तक भैया अहमद अब्बास और दीदी मरियम मेहरदादी को अनुमति दीजिए। खुदा हाफिज़।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है और सभा के समापन से पूर्व मुख्य समाचार एक बार फिर। वियना वार्ता के अवसर पर ईरान ने पश्चिम के अनुचित व्यवहार की आलोचना की है। हसन अबू तुराबी का कहना है कि अमेरिका के चक्कर में यूरोपीय देश कहीं अपने राष्ट्रीय हितों को खतरे में न डाल दें। इराक में दाइश के खतरनाक योजना को विफल बना दिया गया। भारत में किसान आंदोलन को आज पूरा एक वर्ष हो गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज के प्रमुख समाचारों का मुख्य सारांश और अब हम आपसे अनुमति चाहते हैं। खुदा हाफिज। Thank you.